ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक क्रमांक 14। यस्य अनुराग प्लुत हासरास लीलावलोक प्रतिलब्ध मानः व्रजस्त्रियो दृग्भिर् अनुप्रवृत्त धियो वतस्थु किल कृत्यशेषः। यस्यानुराग प्लुतः सरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानः व्रजस्त्रियो दृग्भिर् अनुप्रवृत्त धियो वतस्थु किल कृत्यशेषः। यस्यानुराग प्लुतः सरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियो वतस्तु किल कृत्यशेषः। यस्यानुराग प्लुतः सरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियो वतस्तु किल कृत्यशेषः। यस्य जिसका अनुराग प्रेम प्लुत वृद्धि हास हंसी रास रास विनोद लीला लीला क्रीड़ा अवलोक दृष्टि प्रतिलब्ध प्राप्त मान व्यथा व्रज स्त्रियां व्रज की सुंदरियां दृग्भी नेत्रों से अनुप्रवृत्त अनुराग करते हुए
धीय
बुद्धि द्वारा अवतस्थु मौन बैठ गई किल निश्चय ही कृत्य शेषा घर के कार्य समाप्त किए बिना। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। हास्य रास और चितवन के विनिमय की लीलाओं के पश्चात जब श्री कृष्ण ब्रज बालाओं को त्याग कर चले जाते तो वे अत्यंत व्यथा से विहल हो उठती थीं। वे अपनी दृष्टि से उनका अनुसरण करती और इस प्रकार हत बुद्धि होकर बैठी रह जाती एवं गृहस्थी के कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाती थी। तात्पर्य, श्री वृंदावन में अपनी बाल्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण गोप बालिकाओं के अपने प्रति विशुद्ध अप्राकृत प्रेम के कारण नटखट सखा के रूप में प्रसिद्ध थे। गोप बालाओं के प्रति भगवान का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस दिव्य भाव की कोई तुलना नहीं हो सकती। ब्रज बालाएं भी उनके प्रति इतनी अनुरक्त थी कि उनका प्रेम ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवताओं के प्रेम से भी आगे बढ़ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अंततः गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर ली और यह घोषित किया कि वे उनके विशुद्ध प्रेम का ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। यद्यपि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के हास परिहास से क्रोधित सी होती थीं, फिर भी जब श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते तो वे उनका वियोग नहीं सह पाती थीं और अपनी दृष्टि तथा मन से उनका अनुसरण किया करती थीं। इस परिस्थिति से ब्रज बालाएं इतनी स्तब्ध हो जाती थीं कि अपनी गृहस्थी के कामकाज अधूरे ही छोड़ देती थीं। युवक और युवतियां के प्रेम व्यवहार में भी कोई भगवान से बढ़कर नहीं हो सका। अपौरुषेय शास्त्रों में आता है कि भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से वृंदावन की सीमा छोड़कर कहीं नहीं जाते। वे ब्रजवासियों के अप्राकृत प्रेम के कारण शाश्वत रूप से यहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अभी प्रकट रूप से दृष्टिगोचर नहीं है, तथापि वे क्षण भर के लिए भी वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाते। श्रीमद् भागवत का ये तीसरा स्कंद और इस अध्याय में जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, हम भगवान के विभिन्न लीलाओं को सारांश रूप में पढ़ रहे हैं और सारांश रूप में इसलिए सुनाया गया है क्योंकि यदि विस्तारित रूप में भगवान की किसी एक भी लीला को सुनाना प्रारंभ किया जाए तो उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं अनंत हैं। तो भगवान अनंत हैं और इस कारण से अनंत भगवान के संबंध में जो कुछ है वो भी अनंत है। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण। अब यहां पर भगवान का स्मरण किया जा रहा है। उद्धव जी, विशेष रूप से उद्धव जी के विषय में बताया गया है कि भगवान के पार्षदों में वो प्रमुख हैं और उनका परिचय इस प्रकार से दिया गया है कि वो बहुत ज्ञानवान भी हैं, हालांकि बहुत बड़े भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, परंतु उसके साथ बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं वो। और यहां पर स्मरण हो रहा है भगवान से ज्यादा ब्रज बालिकाओं का, गोपियों का। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि गोपियां ब्रज वधुएं, उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी गहरी और इतनी ऊंची थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने हार गए। अब भगवान श्री कृष्ण जिनका एक नाम है अजित, अजित का अर्थ है जिनको कोई जीत नहीं सकता, और उनको वृंदावन की इन गोपियों ने अपने प्रेम के द्वारा जीत लिया। तो अब इसमें क्या भगवान का गुणगान हो रहा है या भगवान को नीचा दिखाया जा रहा है कि ब्रजवासी गण जो हैं वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ऋणी हो जाते हैं और यहां पर कह रहे हैं कि मैं इनका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। अब नीति शास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति यदि ऋण में है तो वो बहुत दुर्भाग्यशाली माना गया है। यदि पिता ऋण में है तो पुत्र के लिए वो पिता शत्रु के समान है, और उसी प्रकार से जो भी जिसके ऊपर निर्भर है यदि वो ऋणी है, किसी प्रकार का कर्जदार है, तो वो उसका शत्रु बन जाता है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का ऋणी हूं और वो ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। ऐसा भी नहीं कि कुछ आश्वासन दिया कि हां कुछ साल पश्चात, कुछ समय पश्चात कोशिश करूंगा। भगवान कोशिश भी नहीं कर रहे। अब यदि कोई किसी का कर्जदार है तो कम से कम आश्वासन तो देता रहता है ना कि हां अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल दूंगा, ऋण चुकाऊंगा। परंतु यहां पर भगवान वो आश्वासन भी नहीं दे पा रहे, तो यहां पर भगवान में क्या कमतरता दिख रही है कि भगवान जो कि पूर्ण होने चाहिए, उनसे ही सब कुछ आ रहा है जो कि पूर्ण है, वो पूर्ण भगवान किस प्रकार से अपने अंदर ऐसी कमी महसूस कर रहे हैं। हालांकि गोपियों के संदर्भ में और भगवान श्री कृष्ण के साथ जो उनका संबंध वो ऐसा है कि सुखदेव गोस्वामी भी उसे ठीक से उसका वर्णन नहीं कर पाते, तो हम वर्णन करना, समझना ये सब बहुत दूर की बात है कि वो किस स्तर पर प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है, ये हम किसी भी प्रकार की बुद्धि से नहीं समझ पाए। परंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य लिखे हैं आज के श्लोक का, जिसमें कि अनुवाद में ये बताया गया है कि गोपियां वो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो लीलाएं उन्होंने की, उन लीलाओं का स्मरण करते हुए उन्होंने कितने वर्ष काटे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में केवल 11 वर्ष थे और उसके पश्चात भगवान वृंदावन छोड़कर, हालांकि यहां पर तात्पर्य में लिखा है कि भगवान वृंदावन के बाहर एक कदम भी नहीं रखते, परंतु फिर भी गोपियों का जो वियोग है, जो विप्रलंब भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो इसी का है कि भगवान हमें छोड़कर गए। तो दोनों हैं, एक दृष्टिकोण से भगवान छोड़कर नहीं भी गए, क्योंकि भगवान अपने स्मरण में इन गोपियों के साथ हर समय थे। इसलिए इनका जो स्मरण भगवान के प्रति बताया गया है उसकी तुलना की गई है शहद से, हनी, कि जब आप शहद किसी दूसरे बोतल में डालते हो, किसी बर्तन में उल्टा करते हो डालने के लिए, शहद की बोतल से यदि किसी बर्तन में शहद डाल रहे हो तो उसकी धार कैसे होती है? अनब्रोकन, कि बिना टूटे उसकी वो धार होती है। तो उनका स्मरण भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैसा, फ्लॉलेस रिमेम्बरेंस, अनब्रोकन रिमेम्बरेंस, जैसे कि शहद की धार होती है। हमारी म्युनिसिपैलिटी का नल होता है ना, उसको खोलो तो पहले हवा आती है, हवा, फिर कुछ बूंदें यहां वहां, थोड़ा आवाज के साथ कुछ बूंदें, फिर बंद, फिर वापस थोड़ी आवाज, हवा, फिर थोड़ी देर के लिए पानी आएगा और फिर हमें लगता है कि चलो साबुन वाबुन लगा के स्नान करते हैं, तो साबुन वाबुन लगा लिया, फिर से हवा शुरू। तो हमारा स्मरण भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में उस प्रकार का है। हमें तो जबरदस्ती भगवान के बारे में स्मरण करना पड़ता है। गोपियों की तो कथा ऐसी है कि वो तो योग साधना में लगी हैं भगवान को अपने स्मरण से बाहर निकालने के लिए। नारद मुनि ने जब देखा कि पद्मासन में बैठी गोपियां प्राणायाम कर रही हैं, तो नारद मुनि ने पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है आजकल वृंदावन में? तो गोपियां वो यही कहती हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का स्मरण इतना हमें सता रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण उन्हें सता रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए वो ध्यान में लगे हैं वो स्मरण को बाहर निकालने के लिए, विस्मृति के लिए वो ध्यान कर रहे हैं। पूरा अष्टांग योग की जो साधना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कि वो योगी फिर समाधस्थ होता है भगवान के स्मरण में, ध्यान में, और यहां पर ये समाधि में है विस्मृति भगवान की आ जाए। तो बहुत ही ऊंचा भाव है और हमें इससे प्रोत्साहित होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु हमें सिद्धांत दिए हैं इन गोपियों के पदचिन्हों पर चलने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है गौड़ीय वैष्णवों को किन के पदचिन्हों पर चलना है, इन गोपियों के पदचिन्हों पर चलना है। गोपी भरतुर पद कमलयोर दास, दास अनुदास। तो अब गोपियों के पदचिन्हों पर हम कैसे चल सकते हैं जब हमारी स्थिति इतनी विकट है? कलयुग में हमारी स्थिति इतनी विकट है कि 16 माला वो भी जान पे आता है, और यहां पर गोपियों के पदचिन्हों पर कि जिनका स्मरण इस प्रकार से है जैसे कि शहद की धारा, जिनकी शरणागति ऐसी कि यहां पर उद्धव जी स्वयं जब उनको भगवान श्री कृष्ण ने भेजा वृंदावन, भगवान का बहुत विशेष प्रयोजन था उद्धव जी को वृंदावन भेजने का, क्योंकि जब भगवान द्वारका में थे तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी कुछ प्रमुख पत्नियों की शिकायत थी। जैसे एक बार रुक्मिणी और सत्यभामा वो आपस में चर्चा कर रही थी, तो रुक्मिणी सत्यभामा से कहती हैं कि रात में मैंने सुना कि कृष्ण वो करवट बदलते हुए किसी का नाम उच्चारण कर रहे थे, तो सत्यभामा कहती हैं राधे राधे बोल रहे होंगे। तो रुक्मिणी जी कहती हां राधे राधे यही नाम उच्चारण हो रहा था। तो सत्यभामा कहती हैं कि आपने तो केवल रात को सुना है, दिन भर चलता रहता है इसका जप, दिन भर चलता रहता है उनका श्रीमती राधा रानी के नाम का जप। तो अब उनमें ये सब कि ये है कौन राधा रानी, इनका क्या स्तर है, क्या अस्तित्व है, तो वो सब चर्चा करते हैं उद्धव से और अन्य भगवान के पार्षदों से जानने के लिए कि, क्योंकि उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जान लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण फिर उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। मुख्य प्रयोजन यही कि उद्धव जी यदि गोपियों के स्तर को पहचान जाएंगे कि उनकी भक्ति मेरे प्रति कैसी है, और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी, यदि श्रीमती राधा रानी की जो भक्ति है भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका स्तर पहचान जाएंगे उद्धव जी, तो उद्धव जी वो बहुत ही माने हुए प्रचारक भी हैं। तो उद्धव जी फिर प्रचार करेंगे क्योंकि मैं कितना बोल पाऊंगा गोपियों के विषय में, और भगवान बोल नहीं पाते थे श्रीमती राधा रानी के विषय में, गोपियों के विषय में, क्योंकि जब भी भगवान किसी को गोपियों के विषय में कुछ कहने जाते तो भगवान स्वयं भाव विभोर हो जाते, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाते। यहां पर तो हम श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया क्योंकि वो फिर आगे कथा सुना ही नहीं पाते थे, और यहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि उनका मुख्य प्रयोजन उद्धव जी को भेजना, बाकी सभी पार्षदों में से उद्धव जी को भेजने का प्रयोजन यही था कि उद्धव जी जब जान जाएंगे, अब तक वो लोग केवल सुने हैं कि ये गोपियां श्रीमती राधा रानी, इनसे बड़े भगवान श्री कृष्ण के कोई भक्त न तो हुए हैं न होंगे, परंतु उन्होंने साक्षात इसका अनुभव नहीं किया है। विशेष रूप से उद्धव जी ने साक्षात इसका अनुभव नहीं किया है, इसलिए उद्धव जी वो जब अनुभव कर लेंगे तब जाकर विश्व विख्यात ये बात हो जाएगी कि गोपियों का स्तर क्या है, और फिर उद्धव प्रचार करेंगे इसका। और उसके साथ साथ भगवान उद्धव जी को सांत्वना देने के लिए भी भेज रहे थे कि मेरी तरफ से सांत्वना देना कि मैं आ रहा हूं। हालांकि भगवान जानते थे कि ये जो कुछ सांत्वना तसल्ली जो है ये तब तक कोई नहीं पूरी उनको दे सकता जब तक कि मैं वहां पर नहीं व्यक्तिगत रूप से जाता। तो अब उद्धव वो जाते हैं वृंदावन, तो मन में भाव है कि बहुत कुछ सुना है मैंने वृंदावन के विषय में, और भगवान श्री कृष्ण अपने ही वस्त्र उद्धव जी को देते हैं कि मेरे वस्त्र पहनकर जाओ, क्योंकि उद्धव जी हूबहू भगवान की तरह दिखते हैं। तो भगवान को लगा कि मेरे वस्त्र उद्धव जी पहन के जाएंगे और दिखने में भी मेरे जैसे हैं, तो केवल दर्शन मात्र से गोपियां जो हैं वो उनको तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ ये भगवान श्री कृष्ण की याद दिला रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं। तो उद्धव जी इस भाव में कि भगवान ने अपने वस्त्र मुझे दिए, कल्पना कीजिए भगवान अपने वस्त्र महावस्त्र दे रहे हैं उद्धव जी को, तो भगवान के महावस्त्र पहने हुए भगवान कहते हैं कि उद्धव जी मेरी तरह दिखते हो, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सब कुछ भाव उनके मन में था कि हां मैं एक बहुत विशेष मिशन को लेकर वृंदावन जा रहा हूं, तो मन में उस प्रकार का एक भाव था कि मैं गोपियों को थोड़ा शांत करूंगा, और मुझे भगवान भेज रहे हैं भाई, मैं खुद से थोड़ी जा रहा हूं, उनको सांत्वना दूंगा, तसल्ली दूंगा, तो ये भाव था। तो उद्धव जी जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो क्योंकि ज्ञानवान तो हैं ही, तो सब कुछ जानते थे कि ये ब्रजमंडल की रूपरेखा कैसी है, कौन सी नदी बहती है, जमुना, सब जानते हैं। परंतु जैसे ही उन्होंने ब्रजमंडल में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक तरफ जमुना बह रही है और दूसरी तरफ एक और नदी बह रही है। तो उन्हें आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने अब तक जो पढ़ रखा है ब्रजमंडल के विषय में, तो उसमें ये दूसरी नदी कहां से आ गई, और वो दूसरी नदी जमुना से ज्यादा बड़ी। तब वो नदी का स्रोत जानने के लिए नदी के तट से चलते 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 गए और वो पहुंचे नंद भवन, और नंद भवन उस नदी का स्रोत, और नंद भवन से वो देखते हैं कि नंद महाराज और यशोदा माई, उनके आंखों से जो आंसू प्रवाहित हो रहे थे इतने वर्षों से, जो भगवान अब छोड़कर चले गए हैं उनके वियोग में, विप्रलंब भाव में, और उसके साथ साथ अन्य घरों से भी धाराएं आंसुओं की निकल रही थी, और वो इस नदी, आंसुओं की नदी में मिलते हुए एक और वृंदावन में नदी वो पैदा हो चुकी थी। तो अब उद्धव जी जब सर्वप्रथम इस नदी को देख रहे हैं, इस नदी का दर्शन कर रहे हैं, और वो आंसू कोई केवल साधारण किसी की आंखों से निकलते हैं मगरमच्छ वाले, वो नहीं थे, वो दिव्य प्रेम के आंसू थे। तो उद्धव जी जब ऐसे प्रेम के प्रदर्शन को देख रहे हैं सर्वप्रथम, अब तक तो मिले भी नहीं हैं, किसी से मिले नहीं, केवल एक नमूना, प्रेम का एक नमूना देखे हैं, और उद्धव जी थोड़ा अब संभल रहे हैं कि मुझे थोड़ा संभल कर यहां पर किसी से वार्ता करनी होगी। तो हालांकि वर्णन है, वो नंद महाराज से मिलते हैं, यशोदा माई से मिलते हैं, और धीरे धीरे उन्हें पता लगता है। अब नंद और यशोदा तो वात्सल्य रस में है, तो वात्सल्य रस में वो जब उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसी में उद्धव जी वो आश्चर्यचकित हो जाते, भौचक्का रह जाते हैं कि कोई व्यक्ति के अंदर इतना प्रेम, इतना धैर्य, इतना उत्साह इतने वर्षों से कैसे बना रख सकता है। और अब तक तो गोपियों से मिले नहीं, क्योंकि गोपियों का रस तो वात्सल्य रस से ऊंचा है, माधुर्य रस। तब फिर वो गोपियों से मिलने जाते हैं, तो अब गोपियों से जब वो मिलने जाते हैं तो उद्धव जी विशेष रूप से राधा रानी से मिलना, वो प्रयोजन है, श्रीमती राधा रानी से उन्हें मिलना है, क्योंकि इतना सुन रखा है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि माधुरी रस में भी जो पराकाष्ठा है माधुरी रस की, वो है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी से वो जब भेंट करते हैं, तो हालांकि उनको ये लगता है कि शायद वो मुझे कृष्ण समझ बैठेंगे, क्योंकि मैं दिखने में भी और वस्त्र पहन रखे हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी वो बिना देखे ही केवल आहट से समझ में उनको आ जाता है कि ये कृष्ण है या और कोई, देखने की भी जरूरत नहीं है उनको, तो केवल जो हवा बहती है, वो हवा बहते हुए जो भी कुछ गंध लाती है, उस गंध से उसने समझ में आ जाता है कि ये कृष्ण की गंध है या और किसी की गंध है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि श्रीमती राधा रानी हम साधकों को क्या सिखा रही है, कि एक है साक्षात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो हम करते हैं, जैसे कि हरिनाम जप करना, श्रीमद् भागवत से श्रवण करना, अर्च विग्रह की पूजा, तो ये है डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस। परंतु यहां पर श्रीमती राधा रानी उद्धव जी को ये दिखा रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को वो इनडायरेक्टली भी कैसे पूजती रहती हैं। और हमारी साधना भक्ति में अक्सर हम ऐसी स्थितियों में आएंगे जब हम डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, तो उस समय हम भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग पहलू से कैसे देख पा रहे हैं, यह हमारी परीक्षा है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आहट पहचान जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण के गंध को पहचान जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि निरंतर उनका स्मरण बना रहता है भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए श्रीमती राधा रानी अपने भाव को व्यक्त करते हुए वो कहती हैं कि संभोग से ज्यादा मैं विप्रलंब में आपके भाव में रहती हूं। भगवान श्री कृष्ण के भाव में संभोग से ज्यादा विप्रलंब में वो रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि जब मैं आपके साथ हूं साक्षात, जब संभोग रस में हूं आपके साथ, तो उस समय तो आप मेरे सामने हो, परंतु जब आप मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं हो और मैं उस विप्रलंब भाव में हूं, तो जहां कहीं मैं देखती हूं आपको ही देखती हूं। तो श्रील प्रभुपाद इस भाव को लेते हुए कहते हैं, द मूड ऑफ सेपरेशन इज मोर स्वीट एंड इंटेंस देन द मूड ऑफ यूनियन, बिकॉज इन द मूड ऑफ यूनियन द डिवोटी सीज कृष्णा ओनली एट वन प्लेस वेयर कृष्णा इज देयर, बट इन द मूड ऑफ सेपरेशन द डिवोटी सीज कृष्णा एवरीवेयर, एंड दैट इज रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस, टू सी कृष्णा एवरीवेयर। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव वो व्यक्त करती हैं। तो अब उद्धव जी वो इस भाव में है कि मैं श्रीमती राधा रानी के भाव की कितनी गहराई है उसको पूर्ण रूपेण जानने के पश्चात ही जाऊंगा यहां से। माई विजिट शुड बी फ्रूटफुल, कि वो सांत्वना तसल्ली वगैरह वो तो सब छोड़ दिया, कि ये सब तो शायद जो मैं जिस मिशन के लिए आया हूं वो तो मिशन इम्पॉसिबल है, वो सब नहीं होने वाला, परंतु यहां पर मैं कुछ इनसे सीख के जाना चाहता हूं और हो सके तो इनके कृष्ण प्रेम की गहराई को नाप के जाना चाहता हूं। क्योंकि उस ज्ञानी के भाव में है तो वो कुछ हासिल कर जाना चाहते हैं। तो वो श्रीमती राधा रानी से कहते हैं, श्रीमती राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण की शिकायत कर रहे हैं, कहते हैं कि आप जो इतना रो रहे हो, इतना वियोग कर रहे हो, इतने संतप्त आप हो, किसके लिए? उस कृष्ण के लिए। मैं आपको बताता हूं, वो कृष्ण द्वारका में 16,108 रानियों के साथ बहुत अच्छी से विहार कर रहे हैं, यहां आपको इस दशा में छोड़कर बहुत ऐश्वर्य और उनकी सेवा चल रही है वहां पर, इन पत्नियों के साथ माधुरी रस में विहार करते हुए उनकी तो पार्टियां चल रही हैं, यहां पर आप जो इतने वियोग में हो। हालांकि उद्धव जी केवल और परखना चाहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का भाव कितना गहरा है कृष्ण प्रेम का। तो उद्धव जी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहते हुए अंत में कह देते हैं कि अरे ऐसे कृष्ण से क्यों आपने लगन लगा रखी है? कोई होगा जो इस प्रकार से किसी के प्रति लगन लगा के रखेगा कि वो तो अपनी ऐश कर रहा है, वो भी अन्य स्त्रियों के साथ, ऐसा नहीं कि वो ऑफिस में किधर काम कर रहे हैं, तब तो ठीक है कि उनकी जो प्रियतमा है वो वहां पर सोचें कि ठीक है ऑफिस में है काम कर, लेकिन कहां पर है? इन रानियों के साथ, सत्यभामा रुक्मिणी और अन्य इन पटरानियों के साथ। तो उद्धव जी श्रीमती राधारानी से कहते हैं कि अरे आप छोड़ क्यों नहीं देते इन कृष्ण को, क्या दिया इन्होंने बदले में, आपके इन आंसुओं के बदले में इन्होंने क्या दिया और आंसू। तो श्रीमती राधारानी जब ये सुनती हैं तो श्रीमती राधारानी का जो उत्तर है उद्धव जी को, वो ऐसा उत्तर है कि उद्धव जी इस उत्तर को सुनने के पश्चात एक और धारा उसमें मिलती है, उन आंसुओं की नदी में एक और धारा मिलती है, वो है उद्धव इनके आंसुओं की धारा। सुनना चाहेंगे श्रीमती राधारानी का जवाब? उद्धव जी जब ये प्रस्ताव सामने रखते हैं श्रीमती राधारानी के, आप इनको भूल क्यों नहीं जाते, क्या दिया उन्होंने आपके प्रेम के प्रति आपको, तो श्रीमती राधारानी उद्धव जी से कहते हैं कि आपके विषय में हमने बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, दुनिया बहुत देखी है, बहुत साक्षात्कार आपका है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कुछ उदाहरण पेश करते हुए। तो श्रीमती राधारानी 5 पशुओं का उदाहरण प्रस्तुत करती है और कहती हैं कि इन 5 पशुओं के अंदर क्या भाव है वो आप जानते हैं क्योंकि आप बड़े विद्वान हैं, परंतु फिर भी मैं आपको याद दिलाते हुए इन 5 जानवरों का उदाहरण देना चाहती हूं और फिर आप बोलिए कि मुझे क्या करना चाहिए मेरा जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसके संदर्भ में। तो सबसे पहला उदाहरण श्रीमती राधारानी देती हैं चातक पक्षी का, कि चातक पक्षी वो पूरे वर्ष भर प्यासा रहता है और हम जानते हैं कि केवल वो स्वाति नक्षत्र में वर्षा ऋतु में जब स्वाति नक्षत्र आता है तो बादलों से जो वर्षा होती है वही बूंद को वो चातक पक्षी अपने जीव अपने चोंच में लेता है और उसे ही पीता है। तो ये चातक पक्षी जो पूरे वर्ष भर प्यासा रहता है किसकी प्रतीक्षा में? उस घने बादल की प्रतीक्षा में। उस घने बादल की प्रतीक्षा में वो चातक पक्षी ऊपर अपनी गर्दन ऊपर किए एक टक देखता रहता है। सोचिए हम लोग साल में एक बार निर्जल करते हैं, वो भी अभी गर्मियों के मौसम में आने वाला है, तो साल में एक बार वो एकादशी निर्जला एकादशी हम लोग करते हैं। यहां पर साल भर निर्जला एकादशी, आज भी एकादशी है, और साल में एक बार केवल वो जो स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा की बूंदे, और कोई भी साधारण वर्षा की बूंदे नहीं, स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा की बूंदे हैं वो। तो श्रीमती राधारानी ये उदाहरण देते हुए कहती हैं कि ये चातक पक्षी अक्सर ऐसा भी होता है इस चातक पक्षी के साथ कि घने बादल छा गए, जिनकी प्रतीक्षा में साल भर ये चातक पक्षी था, घने बादल छा गए वर्षा के और अब वो समय आ रहा है जब प्यास बुझेगी, स्वाति नक्षत्र का वो वर्षा का जल मिलेगा। कई बार वो बादल जो हैं वर्षा देने से पहले वो बिजली बरसाते हैं, वर्षा बरसाने से पहले बिजली बरसाते हैं और वो बिजली सबसे पहले इस चातक पक्षी को मारती है। तो चातक पक्षी को वो बिजली मार देती है, परंतु अन्य चातक पक्षी देखते हैं कि ये चातक पक्षी हमारे ही तरह, हम सब जो इस घने बादल की प्रतीक्षा में इतना प्रेम पूरे वर्ष भर इसी के स्मरण में हमने पूरा वर्ष बिताया, ये बादल बदले में हमें दिया क्या? बिजली, और हमें मार डाला। परंतु फिर भी आप देखो अन्य चातक जो हैं अगले वर्ष फिर से वो उसी बादल की प्रतीक्षा में गर्दन ऊपर किए वो एक टक देखते रहते हैं जिस बादल ने पिछले वर्ष उन्हीं के चातक पक्षियों को बिजली से मार डाला था। तो क्या वो चातक पक्षी अपना प्रेम छोड़ देता है उस बादल के प्रति? तो वो एक बादल साधारण सा, और मेरे कृष्ण, उनका नाम क्या है? घनश्याम, जो कि उसी काले बादल के समान उनका वर्ण है। तो यदि एक साधारण सा चातक पक्षी अपना प्रेम नहीं छोड़ता बादल के प्रति, तो मैं क्यों घनश्याम के प्रति अपना प्रेम छोड़ दूं, हालांकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया होगा। दूसरा उदाहरण श्रीमती राधारानी देती हैं, वो देती हैं भंवरे का, कि भंवरा जो है वो कमल के पुष्प से इतना प्रेम करता है कि ये भंवरा, जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक पेड़ से, एक दारू पेड़ से वो छिद्र कर सकता है, दारू भेद निपुणों पी, इतना निपुण है कि एक पेड़ से वो छिद्र कर सकता है ये भंवरा, परंतु वो जब पंकज के कोश में जाकर बैठता है, कमल के कोश में जाकर बैठता है, सुगंध उस कमल की सूंघने के लिए निष्क्रिय भवती, निष्क्रिय हो जाता है वो। और वो कमल का पुष्प जब संध्या के समय बंद हो जाता है, तो यही भंवरा वो कमल की पंखुड़ियों में से छेद कर बाहर नहीं आना चाहता। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? यदि वो एक पेड़ में से छिद्र निकाल सकता है, भेद सकता है पेड़ को, तो एक कमल के पंखुड़ी को क्यों नहीं भेद सकता? परंतु नहीं, क्योंकि वो अपना संग नहीं छोड़ना चाहता कमल के पुष्प के साथ। तो वही कमल का पुष्प बंद होकर उस भंवरे को मार डालता है रात भर, मानो जैसे गला घोट कर उस भंवरे को अपने कोश के अंदर बंद होकर उसे मार डालता है। परंतु फिर भी वो भंवरा अपना प्रेम त्यागता नहीं कमल पुष्प के प्रति। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम क्यों त्यागूं? तीसरा उदाहरण श्रीमती राधारानी देती हैं, वो है एक हिरण का। हिरण को मारने के लिए शिकारी बांसुरी बजाता है, और हिरण जानता है कि ये शिकारी बजा रहा है, क्योंकि वन में बांसुरी और कौन बजाएगा, आएगा कौन बांसुरी बजाने के लिए, ये शिकारी। तो हिरण जानता है कि शिकारी बांसुरी बजा रहा है, परंतु हिरण इतना प्रेम करता है उस बांसुरी की ध्वनि से कि हिरण इतना चुस्त प्राणी, परंतु एक जगह खड़े होकर वो ध्वनि सुनने के लिए वहां पर रुक जाता है, और उसी समय शिकारी बाण चलाता है और इस हिरण को मार डालता है। मरते मरते हिरण शिकारी को कहता है कि शिकारी, मैंने जान लिया है कि धोखा देकर तुमने धोखाधड़ी से मुझे मारा, परंतु मैं अपना प्रेम उस ध्वनि से नहीं छोड़ूंगा, उस संगीत से नहीं छोड़ूंगा अपना प्रेम। इसलिए हिरण इस शिकारी से कहता है कि मेरी एक ही प्रार्थना है, मरते 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 समय उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना व्यक्ति की, तो हिरण कहता है कि मेरी एक ही आखिरी इच्छा है कि हे शिकारी, मुझे मारने के पश्चात जो मेरा चमड़ा तुम निकालोगे, उससे तुम और वाद्य बनाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उससे बनाना, लेट द म्यूजिक गो ऑन। ये संगीत ये चलता रहे, इतना प्रेम ये हिरण संगीत से करता है। तो श्रीमती राधारानी कहती हैं कि यदि हिरण प्रेम संगीत से कर सकता है, कि उसी के द्वारा मारा जाता है वो, उसी के कारण मारा जाता है, परंतु फिर भी वो अपना प्रेम नहीं छोड़ता, तो मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो भी बांसुरी वाले हैं, जैसे कि शिकारी बांसुरी बजा के हिरण को मारता है, वैसे ही हमारे कृष्ण भी मुरलीधर हैं, वो भी बांसुरी बजाते हैं, तो क्यों मैं अपना प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति छोड़ूं? कितने उदाहरण हो गए? तीन उदाहरण। चौथा उदाहरण पतंगा, मौत, अंग्रेजी में जिसे मौत कहते हैं, ये पतंगा ये जलती ही लौ से इतना प्रेम करता है कि इर्द गिर्द पहले प्रदक्षिणा करता है और फिर उसी में प्रवेश कर जाता है, उससे रहा नहीं जाता कि मैं कैसे ये जलती हुई लौ का संग छोड़ूं। तो जलती हुई लौ का संग करने के लिए ये पतंगा जो जानता है कि मैं जल के भस्म हो जाऊंगा फिर भी जाता है, और अन्य पतंगे वो देखते हैं कि हमारा एक आदमी, उसे इस जलती हुई लौ ने जलाकर भस्म कर दिया, परंतु वो भी उसी की तरह इतना प्रेम करते हैं उस अग्नि से कि उस अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, अपने आप को जलाकर भस्म कर देते हैं, परंतु अपना प्रेम उस अग्नि से छोड़ते नहीं। तो श्रीमती राधारानी कहती हैं कि एक साधारण सा कीड़ा इतना प्रेम यदि अग्नि से कर सकता है, तो क्या मैं थोड़ा बहुत प्रेम अपने कृष्ण से नहीं कर सकती। पांचवा उदाहरण, श्रीमती राधारानी कहती हैं मछली, मछुआरा जाता है मछली को पकड़ने के लिए तो जाल फेंकता है, किसी सरोवर में तालाब में मछलियां तैर रही हैं, और उस सरोवर और तालाब में वो मछलियां कई वर्षों से किसका संग करती हैं, उस जल का, उस सरोवर के जल का संग वो मछलियां कितने वर्षों से करती हैं, वहीं पर पैदा होती हैं और कितने वर्षों से वो मछलियां उस सरोवर के जल का संग करती हैं, इतना प्रेम करती हैं क्योंकि उसी के वजह से तो जी रही हैं। परंतु मछुआरा वो जब जाल फेंकता है तो जाल में मछली पकड़ में कैसे आती है, जब वो जाल ऊपर खींचता है तो मछली अटक जाती है और वो जो जल है वो जाल से बाहर फिसल कर निकल जाता है। कभी आपने देखा जाल में जल भी फंसा हुआ है, जाल में जल नहीं फंस सकता, मछली फंसती है। तो यह उदाहरण दिया गया है कि वो मछली जिसने अपना सर्वस्व उस जल को दे दिया था, जिसके वजह से वो जी रही थी, सब कुछ अपना प्रेम सर्वस्व शरणागति उसने उस जल को दे दिया, और विकट परिस्थिति में उस जल ने किया क्या। विकट परिस्थिति मछली की कब आती है, जब जाल में फंस जाती है और मछुआरा जाल को खींच रहा है बाहर, वो उसके लिए सबसे विकट परिस्थिति है। उस विकट परिस्थिति में उस जल ने क्या साथ निभाया, मछली को छोड़कर वो जल चला गया। तो यदि, और फिर उस जाल में वो मछली तड़पती हुई, तड़पती बिलकती हुई, वो उसका एक ही प्रार्थना है कि मुझे फिर से उस जल में फेंको। वो किसके लिए तड़प रही है, उसी जल के लिए तड़प रही है जिस जल ने दगा दिया, धोखा दिया। तो यहां पर श्रीमती राधारानी कहती हैं कि यदि एक साधारण सी मछली उस जल के प्रति इतना प्रेम दिखा सकती है, इतनी शरणागति कि जिस जल ने दगा दिया उस मछली को उसकी विकट परिस्थिति में, तो क्या मैं भगवान श्री कृष्ण को छोड़ पाऊंगी कभी, जिन्होंने इतना प्रेम मुझसे किया है और कर भी रहे हैं। तो उद्धव जी जब ये सारे उदाहरण अब सुने तो उद्धव जी की आंखों से आंसू बहने लगे, और उद्धव जी वो फिर भगवान श्री कृष्ण के पास जब गए तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उद्धव जी थोड़ा बदल के ही आने वाले हैं, परिवर्तन अटेंड करके आने वाले हैं, परिवर्तन होने वाला है इनके अंदर। तो उद्धव जी की फिर प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से एक ही प्रार्थना, कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब जो कुछ मैंने आपकी भक्ति की हो, आपका जितना भी मैंने नाम लिया हो, जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, जितने तीर्थ यात्रा मैंने किए, उन सब का एक ही मुझे परिपक्व फल आप दीजिए कि मुझे एक घास का तिनका, मुझे घास का तिनका बनाइए श्री वृंदावन धाम में, क्यों, ताकि मैं गोपियों के चरण को अपने माथे पे हर समय सजा कर रखूं। तो सोचिए ये ब्रह्मा जी और उद्धव जी, इनकी प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण से है कि वो ये बनना चाहते हैं। कई बार हमारी क्या प्रार्थनाएं होते हैं, बड़ा प्रचारक होना चाहिए, ये होना चाहिए, और यहाँ पर जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उद्धव जी जैसा कौन विद्वान हो सकता है, उनकी प्रार्थनाएं कि एक गुलमलता, एक घास का तिनका मुझे बनाइए, बस। तो यदि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि ये गोपियां, इनका जो प्रेम मेरे प्रति ऐसा कि मैं स्वयं इसका ऋण नहीं चुका पा सकता, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इन गोपियों के भाव को समझकर इनके पदचिन्हों पर इनका अनुकरण नहीं करना, इनका अनुसरण करना है और इनके भाव को हमारी साधना भक्ति में, भाव क्या है? श्रीमती राधारानी का यही भाव है, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्ट माम अदर्शनान मर्म हताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सुस एव ना पर, कि आप मेरे प्राणनाथ बने रहोगे। अब जब श्रीमती राधारानी श्लोक को कह रही हैं कि चाहे आप मेरा गाढ़ आलिंगन करो या मुझे ठुकरा दो या मुझे मर्माहत करो दुर्लक्षता से, परंतु आप मेरे प्राणनाथ बने ही रहोगे। तो हमारी साधना भक्ति में अक्सर हम इतना जप कर रहे हैं, इतना हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतने लेक्चर सुन रहे हैं, इतना सब कुछ, चार नियमों का पालन और कितने सारे नियम, कैसे बात करना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, कितने नियमों का पालन कर रहे हैं और अक्सर कई वर्षों पश्चात हमें लगता है कि क्या भगवान देख रहे हैं क्या मैं कुछ कर रहा हूं, इज ही रिकॉग्नाइजिंग, आई एम स्ट्रगलिंग सो हार्ड, इज ही रिकॉग्नाइजिंग माई एफर्ट्स। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगला व्यक्ति वो कम से कम ध्यान तो दे रहा है कि मैं क्या कुछ नहीं कर रहा उस व्यक्ति के प्रति, तो कम से कम यदि वो देखे भी तो मेरे अंदर एक उत्साह आ जाता है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और वो आदान प्रदान करेंगे, कम से कम देख तो रहे हैं। तो ये परीक्षा है कि क्या हम भगवान श्री कृष्ण से आदान प्रदान प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, या ये भाव है श्रीमती राधारानी की तरह जो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं में दिया, द ओनली गोल इज टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, चाहे कृष्ण किसी और के साथ विहार करते हो। अब देखिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं और किसी के साथ, परंतु श्रीमती राधारानी का भाव एकांत में वृंदावन में भाव वही है, जब भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे तो भाव वही था पूर्ण शरणागति का। इसलिए श्रीमती राधारानी के लिए चाहे भगवान उनका गाढ़ आलिंगन करें या फिर ठुकरा दें, वो दोनों आलिंगन ही हैं। और हमें यदि भगवान आलिंगन भी कर दें तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई बार भगवान देखते हैं जब करते समय हम इतनी मेहनत कर करके जगे रहते हैं, तो भगवान बीच में थोड़ा आते हैं, चलो इतना ये है ना अपनी गर्दन हिला हिला के जब कर रहा है, तो भगवान थोड़ा आते हैं कई बार, लेकिन फिर देखते हैं कि उस समय डुल्की मारना शुरू कर दिया। अर्थात हमारी साधना भक्ति में जो हमारा स्मरण है, यहां पर यही इस अध्याय का शीर्षक है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण उस प्रकार से होना चाहिए जैसे कि उद्धव जी, जो कि यहां पर चर्चा चल रही, विदुर जी, उद्धव जी, मैत्रेय ऋषि और इसी स्कंद में कपिल मुनि, इनका प्रसंग आने वाला है, आने वाला है कपिल मुनि इनका प्रसंग। और श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम दिवस, श्रील प्रभुपाद ने 1977 में श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा तीसरा स्कंद पढ़ो, ये जो तीसरा स्कंद चल रहा है। अब अक्सर उस समय वृंदावन धाम में हम यदि होते उस स्थिति में तो हम क्या बोलते, पढ़ो थोड़ा दशम स्कंद पढ़ो, श्रील प्रभुपाद ने कहा ये तीसरा स्कंद पढ़ो, और वो भी कौन से फिलॉसफी, वो कपिल मुनि की सांख्य फिलॉसफी, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल है। तो इससे यह समझ में आता है कि शुद्ध भक्त उनके लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना वो किसी पर आधारित नहीं होता कि इसकी आधारशिला पर मैं स्मरण करूंगा ठीक से। हमारी साधना भक्ति में हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि हाँ यदि मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा आर्थिक जीवन, मेरा शारीरिक जीवन, मेरा ब्रह्मचारी जीवन, जो भी कुछ वो आप ठीक से संभाल के रखो फिर मैं आपका स्मरण देखो कैसे करता हूं। फिर जितना भी वो शहद की धारा, जो भी धारा आप बोलो वैसी। अच्छा वो नहीं, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो फिर म्युनिसिपैलिटी का नल चालू, फिर उसमें कभी आवाज आ रही, केवल हवा आ रही है, एक दो बूंदे खा यहां आवाज छलक रही है, बस उतना ही केवल। तो होता क्या है कि जब हम अहेतुकी और अप्रतिहता इस भक्ति के विषय में सुनते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण अपेक्षा रख रहे हैं, और वो भी हमारे उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि अहेतुकी और अप्रतिहता वो भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम इस स्थिति को, आध्यात्मिक संसार को प्राप्त हो सकेंगे। इसलिए ये सारे जो प्रसंग हैं श्रीमद् भागवत के, जो भी प्रसंग हैं वो हमें यही सीख दे रहे हैं कि कैसे हम अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति भगवान के प्रति करते रहें। चाहे हम तीसरा स्कंद पढ़ें, चाहे दूसरा, चाहे पांचवा जहां पर नरकों का वर्णन है, चाहे दशम स्कंद पढ़ें जहां पर भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं वर्णित है, चाहे कुछ भी श्रीमद् भागवत से पढ़ें, श्रीमद् भागवत का एकमेव उद्देश्य यही है अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति हमें प्रदान करें। और वो प्रदान तो श्रीमद् भागवत कर रहा है, केवल हमें उसे स्वीकार करना है सही भावना से, और वही है साधना भक्ति का हमारा उद्देश्य। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण। प्रभु जी, अंतिम में जैसे आपने बताया कि हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कभी कि हमारी पारिवारिक स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति अगर ठीक रहेंगे तो मैं भी अच्छी तरह से भक्ति कर सकता हूँ, तो कई बार हम इस स्तर पर ही होते हैं और वो जो आइडियल स्तर जैसे राधा रानी का बताया गया है कि कुछ भी क्यों ना हो हम भक्ति में लगे रहेंगे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारा अवर रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड इज डिपेंडिंग ऑन अवर कंडीशनिंग्स, जैसे फिजिकल भी है कभी तो अच्छी नहीं रहती तो हम स्मरण नहीं कर पाते, तो क्या ये प्रार्थना करना कि मेरी शारीरिक स्थिति भगवान कृपया अच्छी बनाए रखे, तो क्या यह सही है?
वो शुद्ध स्तर तो नहीं है भक्ति का, वो शुद्ध स्तर तो नहीं है, लेकिन शुद्ध स्तर तक पहुंचने के लिए वो एक सीढ़ी है कि हाँ हम भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना तो हमारे आचार्य नहीं सिखाए कि आप मुझे मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दो, ऐसा कोई भजन आपने सुना कि भक्तिनाथ ठाकुर का मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दो? नहीं, प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे भगवान आपके प्रति मेरा कृष्ण प्रेम शुद्ध कैसे हो, उस शुद्ध भाव को मुझे प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक है वो दीजिए आप। Whatever is required for me to become your sincere devotee, you give me that. That should be the prayer. अब उसमें चाहे बीमारी हो चाहे स्वास्थ्य, वो भगवान जानते ना, वो है ना हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, He knows more than us. So our prayer should be, whatever is required for me to become a sincere, pure devotee of yours, Krishna, I am ready to take it. You give me that. Whatever it is. No conditions. That is bona fide prayer.
Prabhuji, तो जैसे कल भी हम बात कर रहे थे और आज भी जो टॉपिक हमने डिस्कस किया कि शुद्ध भक्ति की जो प्रेयर्स है, तो कभी कभी हम पता, हम जब ये सुनते हैं भक्ति में कि वी शुड बी ग्रेटफुल, हम कृतज्ञ रहना चाहिए, और कृतज्ञता का मतलब है कि हम कृतज्ञता के भाव से कुछ सेवा अर्पण करें गुरु को और वैष्णवों को. और जब हम सेवा की बात करते हैं तो प्रभु जी उसमें फिर कुछ रिजल्ट्स आते हैं, या उसमें कुछ वी वॉन्ट टू ऑफर समथिंग, तो उसमें फिर वो चीज़ जब आता है तो हम उसके लिए अगर प्रार्थना करते कि मुझे ये चीज़ अर्पण करना है और वी बिकम एम्बिशियस, तो क्या ये शुद्ध भक्ति की प्रार्थना है या प्रभु जी ये हमारे खुद के
उदाहरण, कुछ उदाहरण दीजिए.
जैसे कि अगर हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम और ज्यादा से ज्यादा कुछ बड़े कॉन्टेक्ट्स को या कुछ ऐसे सिचुएशन को या बड़े क्राउड को टैप करें, फिर हम उसके लिए स्टडी करते हैं, तो क्या ये फिर थोड़ा डेविएशन होता है? बिकॉज भगवान तो, अगर हम सिंसियर रहेंगे तो भगवान तो भेज सकते, भगवान खुद ही विल अरेंज एवरीथिंग, जस्ट लाइक इन प्रभुपाद केस, प्रभुपाद शोड दैट इंटेंस डिजायर and Krishna sent all his pure devotees to Prabhupada to assist in his mission. तो फिर हम इसको कैसे फिर जान पाए और कैसे इसको properly देखें और सेवा करें फिर?
देखिए, भगवत गीता के अनुसार हम समझते हैं कि हमें फल से आसक्त नहीं होना है. भगवत गीता का सिद्धांत क्या है कि कर्म करने का अधिकार है, फल से आसक्त मत हो. एक है फल से आसक्त न होना, इसका अर्थ ये नहीं कि फल का ज्ञान नहीं होना चाहिए. यस, वी शुड नॉट बी अटैच टू द रिजल्ट, बट वी शुड हैव नॉलेज ऑफ द रिजल्ट. व्हाई? सो दैट वी कैन ऑफर इट टू कृष्णा. ग्राफिक एग्जाम्पल इज ऑफ शबरी. शबरी व्हेन शी वॉज टेस्टिंग दोज बेरीज, शी वॉज नॉट एक्सप्रेसिंग हर अटैचमेंट. That one, I want to first. She was expressing her desire to know which is the sweetest one. And then what? What is the next step? Offer it to Ram. So she was gathering knowledge of the sweetest berries. फल की हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो वो ज्ञान अर्जित कर रही थी कि सबसे मधुर से मधुर बेर कौन से हैं, ताकि भगवान श्री राम को वो अर्पित कर सके. सो दीज टू थिंग्स एंड वी शुड नो द डिफरेंस. वन इज अटैचमेंट टू द रिजल्ट एंड द अदर इज नॉलेज ऑफ द रिजल्ट. डेफिनेटली अ डिवोटी हैज टू हैव नॉलेज कि हाँ, श्रील प्रभुपाद बोला करते थे कितने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, गोस्वामी के विषय में संख्या पूर्वक नाम गान नटी भी, संख्या पूर्वक वो लोग नाम लेते थे भगवान. सो there is, you know, this calculation is there, you know, the desire to know about, you know, the extent to which the sadhana bhakti is being performed, so that, you know, in a very organized manner we can offer it to Krishna. So that should be the mode. Lekin jab hum jo bhi kuch kar rahe hain is mode mein ki mera score zyada hoga, वो गणना, वो कैलकुलेशन कि उससे फिर मुझे कुछ रेपुटेशन मिलेगा, दैट इज अटैचमेंट. देन वी आर होल्डिंग फॉर आर सेल्स एंड दैट इज रॉन्ग. श्रील प्रभुपाद अप्रिशिएटेड कॉम्पिटिशन अमंग्स डिवोटीज, हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग्स डिवोटीज. राधा दामोदर बस पार्टी, यू नो, देन यू नो द अदर बस पार्टी एट टाइम, Srila Prabhupada, he appreciated the competition and said, yes, in the spiritual world, the competition is to give pleasure to Krishna more and more and more. Not just qualitatively, but even quantitatively. Both should be there. But the mood is to give pleasure to Krishna. That's always in the forefront. Any other questions? बहुत ही ऋणी हैं और आभारी हैं कि पूना से इतने सारे भक्त आए, विशेष रूप से हिज ग्रेस बाल गोविंद प्रभु. और हाउ मेनी डिवोटीज टोटल? 32. फर्स्ट टाइम बाल गोविंद प्रभु फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से बाकी भक्त भी पहली बार यहाँ पर नासिक धाम में इस मंदिर में आए हुए हैं. एंड यू आर लीविंग आफ्टर योर ब्रेकफास्ट. ये लोग जा रहे हैं फिर से पुणे. हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप इसी प्रकार से और हमें सेवा का मौका देते रहिए और आपका संग देते रहिए. सो लेट अस थैंक दिस वंडरफुल ग्रुप ऑफ डिवोटीज बाय लाउडली चैंटिंग. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.